તારીખ 11/1/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 493 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 249
પત્રાંક 493 પત્રનો મથાળો છે, રીડિંગ છે. અનન્ય શરણ કે દાતા એસે શ્રી સદગુરુદેવ કો અત્યંત ભક્તિ છે. નમસ્કાર. કામ નથી લગાવ્યું, માઇક નથી
લગાવ્યું.
થોડો વધારે કાન દઈને સાંભળવું પડશે. અવાજ ધીમો છે,
બારી સીટ ખુલી છે, બંધ કરી. અવાજ બહાર નો નહીં આવે, બારી જરાક ઉપર ઉભા થઈને ચેક સીટ બારી ખુલી છે, બંધ કરી પ્લીઝ.
જિસકે બરાબરી મેં કોઈ શરણ નહીં હૈ ઉસકો કહેતે હૈ અનન્ય શરણ. જિસકે બરાબરી મેં જગત મેં કોઈ શરણ નહીં હૈ એસે અનન્ય શરણ કો દેને વાલે શ્રી સદગુરુદેવ કો અત્યંત ભક્તિ સે પ્રારંભ મેં નમસ્કાર કિયા હૈ. એ ગુરુ ભક્તિ કા નમસ્કાર વચન હૈ. ગુરુ કે વિષય મેં બહુત બહુત કલમ ચલાઈ હૈ કૃપાલુદેવ ને. એક જગ્યા લિખતે હૈ કે મોક્ષ તો સુલભ હૈ લેકિન મોક્ષ કે દાતાર દુર્લભ હૈ. મોક્ષ તો જીવ કો મિલ સકતા હૈ, વો આસાન બાત હૈ, લેકિન મોક્ષ કે દાતાર ઉતને આસાન નહીં હૈ. બહુત માર્મિક બાતેં લિખી હૈ. મર્મ વો હૈ કે જીવ ઇસ વિષય મેં ભૂલા હૈ. અનંત કાલ મેં બહુત સી બાતેં સમજા હૈ, આત્મા કે વિષય મેં સમજા હૈ, સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર કે વિષય મેં સમજા હૈ, વ્યવહાર કે વિષય મેં સમજા હૈ, સદાચરણ કે વિષય મેં સમજા હૈ, બહુ કુછ સમજા હૈ. ઇસ જગહ પર ભૂલ ભૂલા હૈ, યે એક બીજભૂત ભૂલ રહે ગઈ હૈ. ક્યા હૈ એક બીજભૂત ભૂલ રહે ગઈ, રહેને સે ફિર સભી ભૂલે રહે ગઈ હૈ. યે કારણ હૈ ઇસકે પીછે. જો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ કો પ્રાપ્ત હુએ હૈ એસે જ્ઞાની પુરુષો ને નીચે કહે હુએ છે પદો કો સમ્યક દર્શન કે નિવાસ કે સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાન કહે હૈ. ક્યા કહેતે હૈ કે જ્ઞાની પુરુષ કા વિશેષણ વિશેષતા બતાઈ હૈ. જ્ઞાની પુરુષ કૈસે હોતે હૈ કે જો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ કો પ્રાપ્ત હુએ હૈ. મેને જિસકો શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ કા અનુભવ હુઆ હૈ, અનુભવ કો પ્રાપ્તિ કહેતે હૈ. વસ્તુ તો અનાદિ અનંત આત્મા હૈ, લેકિન અનુભવ નહીં હોતા વહાં તક હોતે હુએ ભી નહીં કે બરાબર હૈ, ઇસલિયે અનુભવ કો પ્રાપ્તિ બોલી જાતી હૈ. ऐसे ज्ञानी पुरुषों ने नीचे कहे हुए मैंने अनुभवी पुरुषों ने ये बात कही है, आत्मानुभवी पुरुषों ने ये बात कही है। ये छह पदों को सम्यक दर्शन के निवास के सर्वोत्कृष्ट स्थान कहे हैं। सम्यक दर्शन निवास कहाँ करता है कि ये छह पद यथार्थ रूप से जिसको समझ में आया हो वहाँ सम्यक दर्शन निवास करता है। और ये सम्यक दर्शन का निवास का स्थानक है उतना ही नहीं सर्वोत्कृष्ट स्थानक है। स्थानक का भी विशेषण रखा है, ये सर्वोत्कृष्ट स्थानक है।
तो
तो एक एक पद में लेंगे वो बात को, एक एक पद की क्या समझ है, किसको समझ कहते हैं। तो बात वो है कि 27वें वर्ष में ये पत्र कृपालु देव ने शायद लल्लू जी को लिखा है, पर आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना इसी छह पद पर हुई है। तो खुद के विचारधारा में, कृपालु देव की विचारधारा में ये बात शुरू से ही थी। सम्यक दर्शन पाने के लिए ये छह पद यथार्थ रूप से ग्रहण होना चाहिए, समझ में होना चाहिए, इसका मतलब ग्रहण होना चाहिए। क्योंकि बुद्धिक स्तर पर तो कई लोगों को समझ में वो बात आती है, लेकिन उसी प्रकार से उसका परिणाम नहीं होता तो वो बात ग्रहण नहीं हुई है। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है, बोलिए। हाँ, वही कहने जा रहा था मैं कि समझ होना एक बात है और समझ को अंतर परिणाम में ले जाना एक दूसरी बात है। तो अंतर परिणाम में कैसे आ सकती है वो समझ, कि जब उसका प्रयोग होता है तब। इसका एकमात्र उपाय यही है कि समझ का प्रयोग होवे तो ही समझ अंतर में उतरती है, वरना यहाँ तक ऊपर ऊपर रहती है, इधर अंतर में नहीं आती है, उसका हृदय प्रवेश नहीं है। दिमाग में बात आ जाती है, हृदय में नहीं आती।
રીઝન એટલે આપણે વાંચી ગયા સમજી ગયા અને પછી પરિણામ ન થયું તો એનું શું કારણ, એના માટે શું કરવું,
પ્રયોગ કરવો, સમજણ અનુસાર સમજણને અંતરમાં ઉતરવા માટે પ્રયોગ થવો જોઈએ। પ્રયોગ વિના સમજણ અંદર ન ઉતરે। इसलिए
तमने
आउटलाइन आपे, दिस इज आउटलाइन। शास्त्र है तो नक्शा है, कहां से कहां जाना है। अंडरलाइन में तो जाना पड़ता है, तो आउटलाइन में सब बात परिभाषा में डेफिनेशन में समझाई जाती है, लोग समझते हैं, लेकिन समझ का अमलीकरण नहीं हुए, प्रयोग नहीं हुए तो वो समझ बेकार जाएगी। समझ का सदुपयोग,
ये समझण जो है तो जो अवलोकन थाय छे ए तो समझण थी थाय छे, तो हवे जे प्रयोग में आवू छे तो ए ए केवी रीते थाय छे, जे भाव
में अवलोकन थी प्रयोग पद्धति शुरू थई
जी,
અવલોકનથી પ્રયોગ પદ્ધતિ શરૂ થઈ. આપણે શું કરવું છે? આજના સ્વાધ્યાય છે કે એક એક પદમાં સમજણ શું ને પ્રયોગ શું. ઠીક, એક એક પદને આપણે એવી રીતે લઈશું સ્વાધ્યાયમાં કે એની સમજણ શું ને એનો પ્રયોગ શું. એટલે એ વાત એકદમ સાવ ક્લિયર થઈ જશે, એ સમજવી ક્લિયર થશે, એ પણ સમજવી ક્લિયર થશે. એટલે પ્રયોગમાં તો દરેકને પોતાને ઉતારવું પડશે, એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વાત દરેકની પોતાની થઈ જાય છે. શું પણ પ્રયોગ શું એની આપણે ચર્ચા કરશું, અને એની એટ લેન્થ ગમે તેટલી ડીપ ચર્ચા કરવી હોય તો વાંધો નથી. શું તલ સ્પર્શે એનું તળિયું બોટમ લઈ લેવાનું, પછી પ્રયોગ આદરવાનો. પ્રયોગ કર્યા વિના, પ્રયોગમાં પુરુષાર્થ છે, સમજણમાં એવો પુરુષાર્થ નથી. કેમ કે વિચાર શક્તિ લઈને આપણે આવ્યા છે. સોપ્ષમ જ્ઞાન મેં અપને કો સમજને કી શક્તિ હૈ, તો સહેજ સમજ સકતે હૈ વો બાત, સહેજ મેં સમજ સકતે હૈ. કભી કભી કોઈ બાત સીધી સમજ મેં નહીં ભી આતી હૈ, એસા ભી બનતા હૈ. તો ઇસકા કારણ યે હૈ કે હમને હમારે એક સોપ્ષમ જ્ઞાન કો મેં કભી ઉલટી સુલટી બાત ભી ઘુસા દી હૈ. જબ તક યે બાત ઉલટી સુલટી અંદર મેં ઘુસી હુઈ નિકળતી નહીં હૈ, તબ તક યે સમજ સલટતી નહીં હૈ. પર કિસીને નહીં ઘુસાઈ હો તો વૈસે હી સમજ મેં, સહેજ રૂપ સે સમજ મેં આ જાતી હૈ, કોઈ તકલીફ દિક્કત નહીં પડતી, કઠિનાઈ નહીં હોતી. પર જિસકો કઠિનાઈ હોતી હૈ વો ભી સમજના ચાહતા હૈ તો દેર સબર વો ભી સમજ લેતા હૈ. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समझ सकती हम लेके आए हैं मनुष्य गति में. अब बात रही पुरुषार्थ करने की, वो प्रयोग में होता है, वो प्रयोग में होता है. वो प्रथम पद है, प्रथम पद में आत्मा है उतना ही है. क्या है?
आत्मा
है. दो ही शब्द है, एक आत्मा और एक है. समझाते हैं इस पद को कृपा गुरु कि जैसे घटपट आदि पदार्थ हैं वैसे आत्मा भी है. ये उत्तर गांधी जी को भी 530 पत्र में वैसे ही दिया है कि आत्मा क्या है. गांधी जी ने प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न गांधी जी के पत्र में कि आत्मा क्या है. तो कहते हैं कि जैसे घटपट आदि पदार्थ है वैसे आत्मा भी एक पदार्थ है. अमुक गुण होने के कारण से जैसे घटपट आदि के होने का प्रमाण है, वो दृष्टांत वहां भी दिया है गांधी जी को, वैसे स्वपर प्रकाशक चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष गुण जिसमें है ऐसा आत्मा के होने का प्रमाण है. ये बात दृष्टांत पूर्वक आत्मा होने के सिद्धांत को समझाया कि आत्मा है तो इस तरह से जैसे दूसरे पदार्थ है वैसे आत्मा भी है. तो ये बात समझने में हमारे में दो प्रकार बनता है. सब एक प्रकार से इस बात को नहीं समझते, दो प्रकार से समझते हैं. जैसे हम पढ़ गए कि आत्मा जैसे घटपट आदि पदार्थ है वैसे आत्मा है, तो घटपट आदि पदार्थ थर्ड पर्सन है, एक तीसरी चीज है,
रूपी है.
जैसे आत्मा भी एक पदार्थ है वो कोई थर्ड पर्सन है, ऐसा नहीं समझना है. जैसे घट मैंने घड़ा, पट मैंने वस्त्र, घड़ा वस्त्र आदि कई पदार्थ देखे जाते हैं, वैसे आत्मा भी एक है. तो उस तरह से समझने में आत्मा कोई एक थर्ड पर्सन है ऐसा समझ में लिया जाए तो वो समझ की सही पद्धति नहीं है। समझ में भी दो प्रकार है, एक परलक्षी समझ है, एक स्वयंलक्षी समझ है। जब आत्मा की बात चलती हो और उसमें कोई तीसरा पदार्थ की कल्पना होती हो कि आत्मा भी कोई एक पदार्थ है, तो वो परलक्षी समझ है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र में आत्मा की परिभाषा इस प्रकार भी है कि आत्मा माने क्या, कि अहम इति, क्या अहम इति, मैं, आत्मा माने मैं। तो आत्मा है, मैंने मैं हूं ऐसा लेना है। हूं फर्स्ट पर्सन में आता है थर्ड पर्सन में आता है। तो आत्मा माने मैं हूं ऐसा लेना है, अपनी मौजूदगी। ये सम्यक दर्शन का निवास स्थान क्यों कहा, कि सम्यक दर्शन है वो सत्ता को ग्रहण करने वाला भाव है, जीव का एक स्वाभिमुख हुआ भाव, कैसा, स्वसन्मुख हुआ ऐसा भाव, अपनी सत्ता को ग्रहण करता है, जानता है नहीं, ग्रहण करता है अपने रूप में, स्वयं के रूप में, कि मैं हूं। इसी को कहते हैं आत्मा। आत्मा मैंने अहम इति, आत्मा मैंने मैं ही आत्मा हूं, और कोई आत्मा दूसरे की बात नहीं, मैं आत्मा हूं और मेरे लिए सभी पदार्थ अनात्मा है। क्या, मेरा आत्मा नहीं है, सभी पदार्थ मेरा आत्मा नहीं है, चाहे परमाणु हो जड़, चाहे दूसरे जीव हो, मेरे लिए अनात्मा है, मैं आत्मा हूं बस। ये फर्स्ट पर्सन में ऐसा आता है और सम्यक दर्शन का वो विषय है, मैं हूं ऐसी जो स्वसत्ता का ग्रहण होना, ये सम्यक दर्शन का कार्य है। और सम्यक दर्शन का विषय आत्मा है और कोई नहीं है, इसीलिए उसको सम्यक दर्शन बोला जाता है। वो तो आत्मा का दर्शन करता है, ये स्वरूप का दर्शन करता है। तो इसलिए यहां पर भी प्रयोगात्मक बात क्या लेनी है, ये तो बात थोड़ी थियोरिटिकल समझ में आ गई कि स्वपर प्रकाशक चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष गुण जिसमें मैंने मेरे में है, यहां प्रयोग करना है कि चैतन्य स्वपर प्रकाशक चैतन्य सत्ता स्वयं को प्रकाश करने वाली है, मैंने अपनी मौजूदगी को प्रकाशित करते हैं और दूसरे पदार्थों को भी है, दूसरे पदार्थ की मौजूदगी को भी वो प्रकाशित करता है, जिसके चैतन्य के प्रकाश में स्वयं की मौजूदगी और दूसरे पदार्थ की मौजूदगी प्रकाशमान होती है। ऐसी चैतन्य सत्ता का प्रत्यक्ष गुण जिसमें है, क्या है, प्रत्यक्ष चीज के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, दृष्टांत देने की आवश्यकता नहीं, अनुमान करने की आवश्यकता नहीं, तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं, और ग्रंथ देखने की भी आवश्यकता नहीं। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण। जो बात प्रत्यक्ष है इसके लिए सबूत क्या देना और दृष्टांत क्या देना और विचारोत्तर क्या लगाना और ग्रंथ में क्या ढूंढना, कुछ नहीं। देखो हम है, हम है, हम है, મેં હું મેં હું મેં હું મેં હું એ આપના અહમપણા હોને કા અહમપણા અપને કો માલુમ પડતા હૈ કે નહીં માલુમ પડતા હૈ કે મેં હું કે મેં નહીં હું એસા માલુમ પડતા હૈ કે નહીં મેં હું એસા માલુમ પડતા હૈ વો ઇતના બળવાન રૂપ સે માલુમ પડતા હૈ કે હમકો કોઈ ઇગ્નોર કરતા હૈ તો હમકો અપના અપમાન દિખતા હૈ અવમાનના દિખતી હૈ અપના ઇન્સલ્ટ દિખતા હૈ ઇસમે અપને કો દુઃખ હોતા હૈ દેખો હમ આયે થે તો સામને ભી નહીં દેખા જિસકે ઘર ગયે ઓર બુલાયે નહીં આઈએ આઈએ તો એસા તો નહીં કે લેકિન સામને ભી નહીં દેખે તો હે જૈસે હમ હૈ નહીં હમારી મૌજૂદગી કા નોટ ભી નહીં કિયા ક્યા હા કૈસા બુરા લગતા હૈ તો હમ હૈ અબ હમ કહાં હૈ કે ચૈતન્ય સત્તા મેં હમ હૈ ઉતના ડિફાઈન ક્યા હૈ વરના ક્યા હૈ કે હમ શરીર રૂપ હૈ હમ શરીર વાલે હૈ હમ રાગ વાલે હૈ હમ પરિવાર વાલે હૈ ઓર એસે એસે પરિસ્થિતિ વાલે હૈ જો ભી પરિસ્થિતિ હૈ વૈસે વો ગડબડ હૈ યે સબ ગડબડ હૈ ચૈતન્ય સત્તા મેં હમારી મૌજૂદગી કી સમાપ્તિ હો જાતી હૈ ક્યા હૈ
સમાપ્તિ
ચૈતન્ય સત્તા મેં હમારી મૌજૂદગી હમારી હૈયાતિ હમારા અસ્તિત્વ સમાપ્ત હોતા હૈ ઇસસે આગે હમ નહીં હૈ હમ રાગ મેં ભી નહીં ઓર હમ શરીરવાદી મેં ભી નહીં તો ફિર દૂસરે પદાર્થ મેં તો સવાલ ઈ પેદા નહીં હોતા પ્રયોગ મેં ક્યા લેના હૈ કે હમ કહાં અપને કો અનુભવ કરતે હૈ દેખે શરીર મેં અગર હમ હમારી મૌજૂદગી કા અનુભવ કરતે હૈ તો હમ ચૈતન્ય સત્તા મેં હમારી મૌજૂદગી કા અનુભવ નહીં કરતે હૈ રાગ મેં હમ હમારી મૌજૂદગી કા અનુભવ કરતે હૈ તો ચૈતન્ય સત્તા મેં હમારી મૌજૂદગી કા અનુભવ નહીં કરતે હૈ ઓર ઘર મેં મકાન મેં પરિવાર મેં કિસી સદસ્ય સે યે મેરે હૈં વો મેરે હૈં વો મેરે હૈં ઇસમેં ભી ચૈતન્ય સત્તા મેં અપના અસ્તિત્વ નહીં દેખા ભૂલે અપને ચૈતન્ય સત્તા કે અસ્તિત્વ કો ભૂલ ગયે હૈં તો ભીતર મેં જો ઇસ પદ કા પ્રયોગ કરના હૈ વો ઇસ તરહ સે કરના હૈ કે મેં પણા કહાં હો રહા હૈ તો આપ કહેંગે કે દેખો હમકો તો મેં પણા ઓર સબ જગે હો રહા હૈ શરીર મેં ભી હો રહા હૈ રાગ મેં ભી હો રહા હૈ પતિ પત્ની મેં ભી હો રહા હૈ માં બાપ મેં ભી હો રહા હૈ ભાઈ બહેન મેં ભી સબ જીતને ભી હમારે સંબંધ હૈ સબ મેં મેરા પણા હમકો તો લગતા હૈ તો હમારી પરિસ્થિતિ હૈ તો જ્ઞાની કહેતે હૈ કે તુમ ભૂલ મેં હો ભ્રાંતિ મેં હો પર ઉસ ભ્રાંતિ કે કારણ સે ઉસ કલ્પના કે કારણ સે તુમે દુઃખ હોને વાલા હૈ સુખ હોને વાલા નહીં હૈ તુમ ઉપાધિ મેં આ જાઓગે અપને ચૈતન્ય સત્તા મેં અહમપણા છોડ કરકે ઓર જગે ભી જહાં જહાં ભી અહમપણા કિયા એક જગે કિયા તો ઓર જગે બહોત જગે કરને વાલે હૈ તુમ સારી દુનિયા મેં કરોગે એક પરમાણુ મેં મમત્વ કરતા હોય સારી દુનિયા મેં મમત્વ કરને વાલા હૈ કે અભિપ્રાય એસા હી હૈ તો એ ઉપાધિ તુમકો અનંતી ઉપાધિ હોને વાલી હૈ વો ઉપાધિ દુઃખ રૂપ હૈ અબ બાત રહી સુખી હોને કી તો હમ કહેતે હૈ કે ચૈતન્ય સત્તા મેં તેરા અહમપણા હૈ તુમે નહીં માલુમ પડતા હૈ તો તુમ ધ્યાન સે દેખો ગૌર સે દેખો જહાં તક નહીં દિખને મેં આવે વહાં તક દિખને કી કોશિશ કરો એસા જો પ્રયત્ન હૈ એસા જો પુરુષાર્થ હૈ વો પ્રયોગ કે સાથ હોતા હૈ વિચાર મેં નહીં હોતા ઉતના વિચાર મેં થર્ડ પર્સન હો જાતા હૈ આત્મા ઇસલિયે હમે યે પહેલે પદ મેં હી सम्यक दर्शन का निवास देखने का है। सम्यक दर्शन का निवास वो कैसे है कि मैं केवल चैतन्य स्वरूप हूं, जितने पर पदार्थ में मेरा पना करता हूं ये तो एक मेरे चैतन्य सत्ता में जानने की चीज है, ये ज्ञेय मात्र है, भिन्न ज्ञेय मात्र है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और मेरा स्थान ज्ञान मात्र क्या है, मेरा स्थान ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र और सब ज्ञेय मात्र, मैं मात्र ज्ञान और सब मात्र ज्ञेय, इसके सिवा और कुछ इससे कोई इससे सिवा ज्यादा कुछ भी मेरा संबंध है ही नहीं। इस तरह से चैतन्य सत्ता में अपनापन है, अपने अपना अस्तित्व है, अपनापन है, आत्मत्व है, उसको अनुभव करने का कोशिश करना चाहिए। समय सार में उनसे सित्तेर गाथा, दो गाथा साथ में, उसमें ये विषय लिया है, उसमें प्रयोग की बात इस तरह से लिया है कि देखिए अपने अनुभव को कि जिस तरह से ज्ञान की क्रिया हो रही है, ज्ञान क्रिया जिस प्रकार से जानने की क्रिया हो रही है, उसी प्रकार से रागादि क्रिया नहीं हो रही है, क्रोधादि क्रिया नहीं हो रही है, और जिस प्रकार से क्रोधादि क्रिया हो रही है उसी प्रकार से ज्ञान क्रिया होना मालूम नहीं पड़ती, मालूम नहीं पड़ती, मालूम मैंने तुम अपने अनुभव को देखो। परिणमन में दो बात है, राग या क्रोधादि भी है और ज्ञान क्रिया भी है, दो भाव है। ज्ञान स्व है पर स्व के सिवाय सब कुछ पर है, रागादि क्रिया भी पर है, क्रोधादि क्रिया भी पर है, तो एक बोलने की बात हुई। अब अपने अनुभव को देखो कि तुमको क्या मालूम पड़ता है, ज्ञान में स्वपना मालूम पड़ता है या रागादि क्रोधादि भाव में स्वपना मालूम पड़ता है। आप ये कहेंगे कि हमको तो राग में स्वपना मालूम अनादि से चालू है और अभी भी चालू ही है, इसका क्या करें। तो कहते हैं कि इस जो भूल है वो भूल तलाश करने से मिट जाती है, भूल है तो भूल रूप देखने से ही भूल छूटती है। क्या है
भूल रूप देखने से
भूल है तो जहां तक नहीं देखती है वहां तक भूल है, भूल कहां तक है, जहां तक भूल नहीं दिखती है वहां तक भूल है, भूल दिखने से भूल नहीं रहती किसी की भी, किसी बारे में भूल निकल जाती है। तो मालूम तुमको क्या पड़ता है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं ऐसा मालूम कहां कहां पड़ता है, तो राग में पड़ता है। तो कहो आप ध्यान से देखो, ध्यान में मैं हूं ऐसा है तो बराबर तो समझ में नहीं आता, ऐसा पकड़ में तो नहीं आता। तो एक और उसको और बात समझाते हैं कि देखो राग हुआ क्रोध हुआ जो भी भाव हुआ वो चला गया कि रह गया, तो चला गया, और कौन रह गया फिर, तुम चला गया क्या, राग में हूं ऐसा तेरा अनुभव था और राग चला गया, राग की जगह द्वेष आया, राग की जगह द्वेष आ जाता है, एक ही पदार्थ में राग की जगह द्वेष आता है कि नहीं आता है, तो राग चला गया तुम चला गया क्या, नहीं चला गया मैं तो हूं, फिर तुम कहां था, हम कहते हैं कि तुम तुम्हारी चैतन्य सत्ता में है, ज्ञान में है, तुम तो राग चला गया तो और तो कोई दूसरा भाव था ही नहीं, ज्ञान भाव था। तो युक्ति में तो समझ जाएगा, बात तो ठीक है। राग में मैं हूं ऐसा मेरा अनुभव सच्चा इसलिए नहीं है कि राग मिटता है मैं नहीं मिटता, राग छूटता है मैं नहीं छूटता, राग का नाश होता है मेरा नाश नहीं हुआ, मैं यूं का यूं खड़ा हूं। तो फिर कहां खड़ा हूं? देखो, तुम गौर से देखो, ज्ञान में तुम हो। और ये परिस्थिति ऐसी है कि जब तक अज्ञान भाव से राग में अपनापन महसूस होता है, अनुभव होता है, तब तक ज्ञान होते हुए भी उसमें अपनापन नहीं अनुभव होता, हो ही नहीं सकता किसी को भी। और जिसको भी ज्ञान में अपनापन मालूम पड़ा, उसको राग होते हुए भी अपनापन मालूम नहीं पड़ेगा, ज्ञान को चुके हुए हैं, ज्ञान को चुक जाते हैं, ज्ञान में अपनापन अनुभव में नहीं आता है। तो देख लीजिए, बात सही है कि नहीं है? कि ज्ञान तो चलता है लेकिन ज्ञान में अपनापन नहीं हो रहा है, राग में हो रहा है, तो वहां से हम स्लिप हो जाते हैं, राग का जो विषय है वहां भी अपनापन कर लेते हैं। राग का विषय तो कोई जड़ पदार्थ है, कोई चेतन पदार्थ भी है, वहां सब में अपनापन हो जाता है क्योंकि राग में अपनापन हुआ इसलिए। तो राग में अपनापन होने वाले को चैतन्य सत्ता का चुकना होता है, वो चुक जाता है, पर वो कहने वाले का बात अनुभव से सम्मत हो जाएगा। अब तक वो बात हम हमारे अनुभव को समझने नहीं लेते थे। ज्ञानी ने क्या बात बताई? फिर से कि ज्ञानी ने वो बात बताई कि देख, तेरा अनुभव में तुम राग में अपनापन करते हो तो राग के विषय में भी तेरा अपनापन हो ही जाता है सहज रूप से, और तुम्हारे ज्ञान को चुक जाता है ज्ञान होते हुए भी। देख लो तुम्हारा अनुभव में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अनुभव से ये बात समझ में आ जाएगी। तो कहने वाले पर एक विश्वास आएगा कि बात तो हमारे अनुभव की वो बताते हैं, जैसे वैद्य हैं उनको बोला कि हमको बहुत पट्टी लग गई है, तो क्या पेट में चुक आती है? उसने नहीं बताई, लेकिन वैद्य ने बोले कि तुमको चुक भी आती है, घाव होते हैं, तब तो तुमको मरड़ा है, मरड़ा मैंने डिसेंट्रिक बोलते हैं कि तब तो तुमको डिसेंट्री हुआ है। वो बात उनको वैद्य को कैसे पता चलता है कि उनको इस ज्ञान का अनुभव है, इस विषय का अनुभव है? वैसे ज्ञानी उल्टा अनुभव को भी समझाते हैं जहां तक हमारी पहुंच नहीं है कि देखो तेरा उल्टा अनुभव ये काम कर रहा है। अब सुल्टा अनुभव कराने के लिए तुमको बोलते हैं कि देखो ये रागादी छूट जाते हैं, ये संयोग जो मेरे हैं वो भी छूट जाते हैं, कोई तेरे साथ नहीं रहता, तेरे साथ एक ज्ञान रहता है, और तुम ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, तो तुमको मालूम पड़ेगा, तुमको अवलोकन की प्रैक्टिस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या
प्रैक्टिस का प्रयोग?
ये जो अवलोकन का प्रयोग है इसकी प्रैक्टिस तुमको चालू रखनी पड़ेगी, और वो चालू रखने से तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, वो शार्प हो जाएगा एकदम। पर शार्प होने से तुमको मालूम पड़ेगा ज्ञान में मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो ज्ञान में है, राग में नहीं है, और दूसरे पदार्थ में मैं नहीं हूं, ऐसा प्रत्यक्ष हो ही रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष परिणमन हो ही रहा है, ऐसा जिसमें स्वभाव है, गुण है, ऐसे आत्मा के होने का प्रमाण है। आत्मा का होने का प्रमाण क्या लिया? चैतन्य सत्ता जिसमें प्रत्यक्ष है, स्वपर प्रकाशक बना, ये इसको होने का प्रमाण है। राग होना वो आत्मा का प्रमाण नहीं है, भले ही राग जड़ में नहीं होता है, राग आत्मा को होता है, लेकिन ये होने का प्रमाण नहीं है, इसलिए कि ये हमेशा रहता नहीं, किसी अवस्था में होता है, किसी अवस्था में नहीं होता। जैसे शुद्धों को नहीं होता तो क्या वो अनात्मा है, क्या अजीब है, क्या जबकि ज्ञान एक इंद्रिय को भी है और सिद्ध भगवान को भी है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ये बात अपने मौजूदगी पकड़ करके अनुभव में आना चाहिए, तब तो आत्मा है ये पद यथास्थान में रहा। वरना आत्मा है माना आत्मा है, कौन नहीं मानू तो मानते ही है कि आत्मा है, ऐसा नहीं चलेगा। सम्यक दर्शन का निवास लिया है ये तो ऐसी बात करने की बात नहीं है, ये तो सम्यक दर्शन का निवास की बात है। तो इस तरह से मैं चैतन्य सत्ता में स्वतः प्रकाशक मेरी चैतन्य सत्ता है, इसमें मेरी अस्तित्व की समाप्ति है और मेरी मौजूदगी मुझे वहां ही अनुभव में आती है। जब और जगह मेरी मौजूदगी मुझे अनुभव में नहीं आती है तो फिर मुझे विभाव होने का कोई कारण नहीं रहता। विभाव होने का कारण क्या है? पर में एकत्व, राग में और राग के विषय दोनों पर है, पर में एकत्व, यही विभाव होने का कारण है, यही संसार होने का कारण है। संसार शब्द ही संसरण में से आया है, संसरणम इति संसारः, संस्कृत में वो बात है। संसरण मैंने सरक जाना, क्या सरक जाना, सरी जबू, क्या थी सरी जबू, स्वरूप ना थे, स्वरूप में से सरक करके और जगह चला गया, हो गया संसार, ये तेरा संसार है। संसार कोई दूसरी चीज नहीं है, गुरुदेव को तो बाहरी छोकरा संसार न थे, संसार तो तारा परिणाम ना तू सरकी गयो, ये संसार से बीजू कोई संसार न, तेरा संसार तेरे परिणमन से बाहर नहीं है, तेरा संसार तेरे परिणमन में है। पर बात वही है कि सृष्टि तो खुद ने जमाई है, सारी सृष्टि तो खुद ने ही बनाई है, तो जगत हो गया अपने लिए, वही अपना जगत हो गया, और क्या बात है।
यही परलक्षी ज्ञान
होते हैं, परलक्षी ज्ञान में तो क्या है कि पर मैं हूं, स्वयं को नहीं देखना, स्वयं का लक्ष्य का अभाव जिसमें है और पर का लक्ष्य है, वो परलक्षी ज्ञान है। वैसे स्वपर प्रकाशक चैतन्य सत्या का प्रत्यक्ष गुण जिसमें है, ये जो स्वपर प्रकाशक शक्ति है आत्मा में, ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक शक्ति वाला गुण है और उसका प्रगटपना परिणमन में होता है। शक्ति की व्यक्ति कहाँ होती है? परिणमन में होती है। वो परिणमन प्रगट है, प्रत्यक्ष है, लेकिन हमने सही रूप से हमारे परिणमन को नहीं समझा तो हमारे गुण को यानी स्वभाव को भी नहीं समझा तो हमारे स्वरूप को भी नहीं समझा। और वो समझना हमारे परिणमन से ही समझना है, हमारे स्वभाव को विचार करके, तर्क करके, अनुमान करके, ग्रंथ पढ़ के समझना है, वो पद्धति हमारी नहीं होनी चाहिए। इससे आगे जा करके हमारी पद्धति हमारे परिणमन से, हमारे अनुभव से समझने की होनी चाहिए। क्या गुण से
मतलब
अपनी मौजूदगी मालूम पड़ी और स्वप्रकाशक मेरे सिवा अन्य पदार्थ भी मौजूद है ऐसा मालूम पड़ा ऊपर प्रकाशक पना। चीज तो चीज है, एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, तो हमने लाइट बटन दाब करके लाइट जलाया तो उसमें लाइट की मौजूदगी भी है और कमरे में जो भी पदार्थ पड़े थे, टेबल कुर्सी सोफा जो भी पड़े थे वो भी मालूम पड़े, तो वो प्रकाश है, वो स्वयं को भी प्रकाशता है और दूसरी चीज भी जहाँ जो भी है उसका भी प्रकाश करता है। चीज को बनाता नहीं है, चीज को प्रकाशित करता है, लाइट में ले आता है कि वो है, वरना मालूम नहीं पड़ते वो है कि नहीं है। ऐसे ज्ञान है इस अपर प्रकाशक है, अपने खुद को भी वो प्रकाशित करता है, दिखाता है कि मैं हूं और उसके प्रकाश में और चीज भी मालूम पड़ती है कि दूसरे जगत के पदार्थ भी है। बनाता नहीं है ज्ञान दूसरे पदार्थ को, लेकिन इसकी मौजूदगी को प्रकाशित करता है, जाहिर करता है। क्या करता है? जाहिर करता है कि दूसरे पदार्थ भी है जगत में। और हम ज्ञान को स्व कहें तो बात अपेक्षित हो गई। क्या हो गया? क्यों कि पर के बिना स्व का कथन कैसे किया आपने? ज्ञान ज्ञान स्वरूप मैं हूं ऐसा स्वयं का स्वपद का कथन किया, तो आत्मा है हमारा, उसको स्व कहे इसका मतलब यह है कि कोई पर चीज भी है। स्व और पर अपेक्षित है, पर भी स्व के अपेक्षित है और स्व भी पर से अपेक्षित है, वरना सभी पदार्थ अपने अपने में है। बाकी आपकी अपेक्षा से मैं पर हूं और मेरी अपेक्षा से आप पर हैं, ऐसा दोनों बात अपेक्षित होती है। इसलिए जब मैं हूं वो बात आती है तो दूसरे पदार्थ है कि नहीं है वो बात खड़ी हो जाती है, क्योंकि जगत में एक अभिप्राय है जो सांख्य मत का अभिप्राय है, वो ऐसा है कि विश्व में एक परम ब्रह्म के अलावा कोई पदार्थ ही नहीं है और ये विश्व में सर्वव्यापक है। क्या है? आत्मा परम ब्रह्म सर्वव्यापक को लेते हैं, दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं, और दूसरा पदार्थ है ऐसा लेना वही भ्रांति है। क्या है?
वही भ्रांति,
उसको वेदांत भ्रांति कहते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। स्व भी है और पर भी है, और स्व स्वदेह प्रमाण व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। प्रत्येक आत्मा इसके क्षेत्र की समाप्ति स्वदेह प्रमाण है, इससे बाहर कोई आत्मा नहीं। जिसको जितना देह है उतना उसका क्षेत्र है, क्षेत्र मैंने एरिया, इससे बाहर कोई नहीं है, तो वो एरिया लेता है। सारा विश्व में एक ही परम ब्रह्म है और कोई चीज नहीं है, ऐसे लेते हैं। तो कल्पना से कई बातें बनती है, कल्पना बनने का भी कोई ना कोई कारण है, क्योंकि ज्ञान केवल ज्ञान सर्वव्यापक है ना, तो केवल ज्ञान सर्वव्यापक है वो भगवान की वाणी में आया, तो कुछ लोगों ने ऐसा समझ लिया कि आत्मा ही सर्वव्यापक है क्षेत्र से, लेकिन ऐसा नहीं है, स्वदेह प्रमाण है वो बात। वो अच्छे शास्त्र में आते हैं, कृपालु देव ने भी वो बात लिया है। ऐसे आत्मा के होने का प्रमाण है, तो ये पद जो है एक ही पद में अगर हम ठीक से प्रयोग कर ले और प्रयोग से अनुभव से समझे तो कम से कम सम्यक दर्शन के समीप तो जाएंगे ही जाएंगे, और प्रयोग बार बार होता रहेगा तो इसके फल से सम्यक दर्शन भी हो सकता है, ये बात जरूर है। वो पहला पद लेने में भी कारण है। कृपालु देव ने ये 6 पद का जो योजना बनाई है उसमें बहुत बहुत अनुभव पूर्ण विषय लिया है। आत्मा है उसको पहला पद क्यों लिया, जो क्रम से बात लिया है एक क्रम में कहने वाले का बहुत अनुभव भरा है, ऐसी बात है। और क्रम पर खुद का बहुत वजन था, 83 नंबर का पत्र लिखा है क्रम पर, और क्रम बताने वाले महात्माओं को नमस्कार भी किया है, ऐसी बात किया है। तो कई जगह उन्होंने क्रम लिया है, जैसे 751 में संकेत के 3 संकेत के क्रम लिया है, वो आत्मसिद्धि पर से लिया है। ऐसे 535 पत्र में उन्होंने ऐसी बात लिखी है, मात्र जो ज्ञानी को इच्छते हैं, चाहते हैं, पहचानते हैं, तो क्रमशः ज्ञानी बनते हैं।
इच्छे से
और भजते हैं, तीसरा पद वो लिया है 335 में। मात्र ज्ञानी को इच्छते हैं, पहचानते हैं और भजते हैं, वो ज्ञानी हो जाते हैं, वो ऐसी परिणमन करने वाला उत्तम मुमुक्षु कहना योग्य है, ऐसा लिखा है। तो विक्रम लिया है कि जो मात्र ज्ञानी को चाहता है वो उसको पहचानेगा, दूसरा नहीं पहचानेगा क्रमशः, और जो पहचानेगा वो उसका ही भजन करेगा, दूसरे का भजन नहीं करेगा। उसकी परिणति बन जाएगी, क्या होगा,
परिणति बन जाएगी,
इसकी परिणति बन जाएगी। इसको पर इसकी परिणति ऐसी बन जाएगी, 212 पत्र में लिखा है कि एक घड़ी भी वो उसके बिना रहना वो उसको जीना के, वो मृत्यु के बराबर हो जाता है। कैसा हो जाता है, मृत्यु के बराबर हो जाता है, ऐसा इसका परिणति बन जाती है, तो ज्ञानी हो जाता है। क्यों कि ऐसी परिणति जिसको बन गई कि इसके बिना चले ही नहीं मेरे, तो उसको राजवेश कहाँ होगा, उसकी आसक्ति कहाँ रहेगी, बताइए। तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए उसमें। तो ओवर बाउंड बात किया है उन्होंने 269 पत्र में, 269 में वो लिखते हैं कि मन मिलापी सत्संग हमको नहीं मिल रहा है। क्या लिखते हैं, सुभाष भाई को लिखा है कि जो सत्संग को हम चाहते हैं ऐसा सत्संग हमको नहीं मिल रहा है। बाकी मोक्ष से भी, क्या
मोक्ष से
भी हमको संत चरण की समीपता बहुत प्रिय है, ऐसा लिया। अब संत चरण में क्यों गए, आत्म कल्याण के लिए गए, मोक्ष के लिए गए, तो वो बात अभी नहीं, वो बात अभी
नहीं।
देखो ये आया, मनमाने सत्संग के बिना कालक्षेप होना दुष्कर है, हमारा समय नहीं जाता सत्संग के बिना। मोक्ष की अपेक्षा हमें संत की चरण समीपता बहुत प्रिय है, परंतु उस हरि की इच्छा के आगे हम दीन हैं, पुनः पुनः आपकी स्मृति होती है, सुभाष भाई की स्मृति होती है पुनः पुनः। तो मोक्ष को भी नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या है, इससे भी प्रिय होने का क्या कारण हो गया कि ऐसे संत चरण में मिलने से, ऐसा संसद समागम मिलने से सब कुछ मिल गया, ऐसे सदगुरु मिलने से हमको सर्वस्व मिल गया। क्या मिल गया,
सर्वस्व
मिल गया। फिर भी हमें को सम्यक दर्शन चाहिए और मोक्ष चाहिए तो सर्वस्व
नहीं
मिला है। ऐसे भाव निकाले हैं, बहुत भाव निकाले हैं। एक तीन पंक्ति का, दो पंक्ति का, ढाई पंक्ति का पोस्ट कार्ड लिखा है, लेकिन क्या क्या बात भरी है देखो। इसलिए 335 मात्र सत्पुरुष को इच्छते हैं, चाहते हैं, मात्र शब्द लगाया है। दो बात नहीं उसमें है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, दो बात नहीं रखे हैं। तो उनको तो पहचान हो गई, पहचान हुआ, वो पहला संकित हो गया, फिर उसकी भजना हो गई। तो उसमें कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उनको सब कुछ मिल जाएगा। क्या? जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात है। मैंने इसका मतलब ये हुआ कि संत चरण की समीपता में इस तरह से जो आया उसके परिणमन के गर्भ में सम्यक दर्शन भी पड़ा है और इसके परिणमन के गर्भ में मोक्ष भी पड़ा है। मैंने गर्भ में आ गया, वो जन्म तो अपने काल में होता है, लेकिन गर्भ में आया तो बात तो खत्म होगी कि आ गया मैंने, जन्म तो परिपक्व काल में होगा ही होगा, इसके लिए कोई चिंता उसको होती नहीं, चिंता ही नहीं होती, ऐसी बात। और वास्तव में ऐसे सत्संग प्राप्त जीवों को अपने को प्रतीति आ जाती है कि अब मेरा कोई अकल्याण होना होगा, ये बात बनने वाली है ही नहीं। सारा जगत उलट पुलट हो जाए तो भी मेरा कल्याण होगा, ये बात होने वाली है ही नहीं। इतना अंदर से आत्मा पुकारता है, तो इसके लिए तो ये बात सहज हो जाती है। ये पहला पद है, तो इस तरह से अपने को परिणमन में लेना है और उसका प्रयोग करना है। मैं कहा हूं अंतर खोज, वर्ते अंतर खोज, सदगुरु के वचन सुहाए और वर्ते अंतर खोज। आत्मसिद्धि में लिया है कि ऐसे जीव को, मुमुक्षु जीव को सदगुरु का बोध सुहाता है, प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है वहां रुक नहीं जाता है, वो अंतर खोज में चला जाता है कि मेरा स्वरूप स्वपर प्रकाशक चैतन्य सत्ता में है, मेरी चैतन्य सत्ता स्वपर प्रकाशक है, ठीक है, मैं भी हूँ, मैं भी पदार्थ है, चैतन्य चैतन्य है, मैं इसमें हूँ, मैं मेरे चैतन्य सत्ता में हूँ। इस तरह से वो स्वसन्मुख होने का प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, उसी को कहते हैं प्रयोग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बात तो दिमाग तक समझ में रहेगी और परलक्षी ज्ञान में जैसे कोई दूसरे पदार्थ की बात समझता है ऐसे ही वो बात समझ लेता है, तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है तो इसकी असर नहीं आती है। असर कब आती है कि अपना इन्वॉल्वमेंट होता है तभी असर आती है। बोध की असर कब आती है कि खुद का इन्वॉल्वमेंट हुए बिना बोध की असर कभी नहीं आती। संसार में तो जीव इतने सहज रूपता से अपने को इन्वॉल्व कर देता है कि कोई टॉन्टिंग करता है ना, टॉन्टिंग मैंने क्या, डायरेक्ट आरोप नहीं करना, इनडायरेक्ट आरोप करना, तो खुद को बहुत बुरा लग जाता है। देखो ऐसा बोले कि हम नहीं समझते, हाँ किसको बोल रहे थे, किसको कह रहे थे, तो कितनी असर आती है अपना इन्वॉल्वमेंट होने से, कितनी असर आती है, तो एकदम आकुलता हो जाती है। ये तो रोज का अनुभव है कि नहीं? और यहाँ भगवान का उपदेश है, हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा, असर कहां से आएगी? ये जो परिभ्रमण की वेदना की चर्चा कृपालु देव के पत्र के माध्यम से अपने ग्रुप में चलती है, बहुत से मुमुक्षु की ये शिकायत है कि हमको वेदना नहीं आने का क्या कारण है, बात हमको मनसम्मत है। कृपालु देव कहते हैं इसलिए सम्मत है, उतनी तो बात नहीं है, लेकिन हमको विचार से बुद्धि से ये बात बराबर लगती है, पर कृपालु देव पर विश्वास भी है। लेकिन काम वेदना का परिणाम आ ही नहीं रहा है, बात स्पष्ट है कि एक मृत्यु को भी हम नहीं चाहते हैं। एक मृत्यु का कारण होता है कैंसर आदि कोई, तो उसकी भी चिंता हो जाती है कि कैसे मिटे। भले मिटने का कोई अभी संशोधन नहीं हुआ है, तो भी कैसे मिटे वो चिंता निकाली नहीं जाते, क्या
निकाली
मिटाई नहीं जाते, मिटाना चाहे तो भी। और अनंत मृत्यु, अनंत कैंसर, उसकी चिंता नहीं। सिंपल कैलकुलेटर भी फेल, ये क्या बात है? क्या हमारा दर्शन में इतना तगड़ा है कि इतनी सीधी सादी बात गिनती करके भी हमको असर नहीं पहुंचती है? इसका कारण क्या, वहां तक चर्चाएं चलती है। इसका कारण वो है कि अपने आप को इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, जैसे कोई दूसरे का परिभ्रमण होने वाला हो। जैसे संसार में मृत्यु रोज होता है, रोज समाचार आता है, और मरण नोन तो पढ़ते ही है लोग, भाई कोई सगे संबंधी का हो जाए तो क्या असर होती है सब लोग की मृत्यु, क्योंकि उसकी मृत्यु होगी, इसकी होगी, उसकी होगी, उसकी होगी, और वो भी मालूम है कि मरने वाला हूं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है तो असर नहीं आती है। अपनी अनित्यता का, मृत्यु का अगर असर आता है तब तो सीधा चलने लगता है। गोपाल देव ने लिखा, अगर मृत्यु आने वाली होती ही नहीं, या तो मृत्यु के साथ मित्रता होती तो कोई दूसरा विचार करते ही नहीं। लेकिन अच्छा है कि मृत्यु आती है, और अच्छा है कि अनिश्चित रूप से आती है, कि वर्तमान में ही जागृत हो जाए, वरना तो कोई इतने संसार में फंसे हुए हैं, इतने लगे हुए हैं कि दूसरी बात विचार भी नहीं करेगा। लेकिन ये सब उपकारी है, मृत्युओं का आना भी उपकारी है, और अनिश्चित रूप से आना भी उपकारी है, जीव को कि वर्तमान में जागृत हो जाए कि नहीं, मेरे लिए मेरा जो परमार्थिक कल्याण है उसका कुछ न कुछ करना है मेरे, वरना मैं कहां चला जाऊंगा कोई पता नहीं लगेगा। तो इसलिए अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वहां तक परिभ्रमण की चिंता पैदा नहीं होती, और अपना एनवायरनमेंट होने से चिंता मिटाई मिटती नहीं, चिंता मिटाई मिटेगी नहीं, मिटाई नहीं मिटेगी, इतनी जबरदस्त बात है वो।
वैसे गईकाल सांझ आपे करू ने कि तो संसार ने दूसरी नीचे जिन लोगों मुके दिवस अहियां नहीं आवतो एनवायरनमेंट,
और जगह इन्वॉल्व हो गया है, यानी हम शरीर के संयोग की, यानी अनात्मा की, आत्मा को छोड़ करके चिंता में डूब गए हैं, इसलिए आत्मा की चिंता नहीं होती। और आत्मा की चिंता होगी तो अनात्मा की चिंता छूट जाएगी, दो चिंता साथ में नहीं रहती। अनात्मा की चिंता में आत्मा की चिंता छूट गई, अब आत्मा की चिंता होने से अनात्मा की चिंता छूट जाएगी। ये सहज होने वाला है।
आत्मा
एटले ज्ञान જ દેખાતો નથી, આત્મા એટલે જ્ઞાન છે, કેવું જ્ઞાન ને ચૂકી ગયા છે જોવો જોઈએ, જ્ઞાન ને કેવું ચૂકી ગયા છે, આશ્ચર્યકારક વાત છે, શું કે જ્ઞાન ને કેવું, આટલું મોટું જ્ઞાન કે જેની હૈયાતી વિના દેખાય છે એ વાત આવી ક્યાંથી, આપ કહો છો કે બધું દેખાય છે એ, પણ જેની હૈયાતી વિના દેખાય છે એ આવ્યું ક્યાંથી, પેલા પ્રથમ સત્તા કોની, જાણનાર ની કે જણાનાર ની, કૃપાલુ દેવ ને સમતા રમતા ઉરજતા ઉર્જ સનાવ કો લિયા હૈ, જો આગે હી રહેતા હૈ, સબસે પહેલે વો હૈ, ક્રોધ હુઆ વો કિસકી સત્તા મેં માલૂમ પડા, શરીર હૈ વો કિસકી સત્તા મેં માલૂમ પડા, કે જ્ઞાન કી સત્તા મેં, તો ઉસકો હી હમ છોડ દેતે હૈ, તો એસી બાત હૈ કે કોઈ બડી બાત કો, બડી સમસ્યા કો ગૌણ કરે ઓર છોટી સમસ્યા કો મુખ્ય કરે તો આપણે મૂર્ખ કહેંગે, એસે હમારે અનંત જન્મ મરણ કી બડી સમસ્યા કો ગૌણ કર દિયા, છોટી મોટી સમસ્યા કો ઠીક કરને લગ ગયે, એ ઇસકો ઠીક કરના ઉસકો ઠીક કરના, યે પ્રોબ્લેમ હૈ વો પ્રોબ્લેમ હૈ, ઉદય કે કઈ પ્રકાર ચલતે હૈ, તો એસે હી મહત્વપૂર્ણ બાત રહે જાતી હૈ, ઉસકો હી જ્ઞાની કહેતે હૈ કે વો અવિવેક હૈ, વો વિવેક નહીં હૈ, ઇસ તરહ સે પ્રથમ પદ કા સ્વાધ્યાય હુઆ, દૂસરા પદ કા સ્વાધ્યાય કર લેંગે, યહાં તક.